Yogasya Yogamaya Samavrita Mudhoyan Nabhijanati Loko Mamajam Avyayam Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavrita Mudhoyan Nabhijanati Loko Mamajam Avyayam Rahasyon Ki Chhaya Me छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझान स्वर
एक पेड़ की शाखा पर एक व्यक्ति बैठकर उसी शाखा को काट रहा था। बचपन में हम सब ने शेख चिल्ली की कहानी सुनी है। ऐसा ही एक व्यक्ति पेड़ की शाखा पर बैठकर उस डाली को काट रहा था। नीचे से एक राहगीर गुजरता है और वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपको जानता हूं और आप तो बुद्धिमान हो, फिर उसी शाखा पर बैठकर काट रहे हो, गिर जाओगे। जो व्यक्ति वो डाली काट रहा है वो कहता है, मैंने तुमसे किसी भी प्रकार की एडवाइस नहीं मांगी। और जो भी सलाह बिना अनुमति की दी जाती है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए जाओ यहां से, मेरे पास अपनी बुद्धिमत्ता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। नीचे का राहगीर कहता है, तुम्हारी इच्छा, और वो चला जाता है। काटते काटते वो व्यक्ति उस शाखा को काट ही डालता है और जैसे ही शाखा कटती है वो धड़ाम से नीचे गिरता है। और जैसे वो गिरता है फिर भागता है उसको तलाशते हुए, उस राहगीर को, और उसके चरणों में गिर जाता है कि आपने जो कहा वो सही हुआ, आप मेरे गुरु हैं। राहगीर कहता है, वो व्यक्ति उससे कहता है कि आज के बाद आप जो भी कहोगे मैं विश्वास करूंगा। और राहगीर कहता है इसमें विश्वास की कोई बात ही नहीं है, इसमें विचार की बात है, बुद्धि लगाने की बात है, और आप वापस वही गलती कर रहे हो, एक गलती पहले की और एक गलती अब कर रहे हो। पहले भी शाखा काट रहे थे बिना विचार किए, बस काट रहे थे, और अभी मेरे चरणों को पकड़ रहे हो और अब मुझसे कहते हो कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे जीवन का रास्ता बताओ, क्योंकि आपने जो कहा वो सत्य हुआ। वो राहगीर कहता है इसमें सत्य होने की कोई बात ही नहीं, विचार करो, बुद्धि लगाओ, जिस जाली पर बैठ रहे हो उसको काट रहे हो तो गिरोगे जरूर। पर यह व्यक्ति अब मानने को तैयार नहीं, वो कहता है ना, आपने जो कहा वो सत्य हुआ, मैं तो इतना जानता हूं कि आप मेरे गुरु हैं, अब ये बताओ मुझे आगे क्या करना है, ये भी बताओ कि मैं कब मरूंगा, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की सत्य हुई। वो कहता है व्यक्ति मेरा पीछा छोड़ो, इसमें ना विश्वास की कोई बात है, इसमें केवल बुद्धि की बात है, तुम बुद्धि लगाओ। वो कहता है मुझे बुद्धि बुद्धि पता नहीं, मुझे खाली इतना पता है कि आपने जो कहा मैं गिरूंगा, मैं गिरा, अब कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कब मरूंगा। वो व्यक्ति क्रोधित, परेशान, इरिटेटेड, वो कहता है अब भी मरोगे। वो शेख चिल्ली जैसा व्यक्ति वहीं बैठ जाता है, गुरुदेव ने कहा है, और जो गुरु कहता है वो कभी असत्य नहीं होता है, वो तुरंत लेट जाता है, मर चुका है। मरा कैसे जाता है तो पता ही है सबको, वो लेट जाता है। कुछ लोग वहां से आ रहे होते हैं, सोचते हैं ये मृत व्यक्ति है, उसकी अर्थी बनाते हैं, अर्थी पर उसको डालते हैं और उसको ले जाते हैं शमशान घाट की ओर, और जाते जाते क्रॉस रोड आता है, एक रास्ता दाएं तरफ, एक रास्ता बाएं तरफ। जो लोग अर्थी ले जा रहे हैं अब उनको ये नहीं पता कि कब्रिस्तान की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तब ये जो व्यक्ति जा मृत था और आंखें बंद थी, आंखें थोड़ी सी खोलता है, देखता है और उठ के कहता है वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मर चुका हूं, परंतु मुझे पता है ये जो दाया रास्ता है ये शमशान घाट की ओर जाता है। वो लोग जैसे ही देखते हैं भयभीत होते हैं, वहां डालते हैं और भागते हैं। उसका आगे क्या हुआ पता नहीं, कहानी यही पूरी होती है। परंतु हम जुड़े हुए हैं, हम अटैच्ड हैं अपने ही मतों से, अपने ही विश्वास से, जो हमको सिखाया गया, बताया गया, जो कंडीशनिंग हुई कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, जो ये संस्कार बना ये क्यों बना, ये कैसे बना। विचार, विवेक, चिंतन, मनन, जीवन पुराना नहीं है। जीवन रोज नया है। परिवर्तन रोज नया है। प्रकृति रोज नई है। विचार रोज नया है। तो हम पुराने क्यों? चारों तरफ नूतनता ही नूतनता है। चारों तरफ निरंतर एक अभिनव क्रांति घटित हो रही है। लाइफ इज न्यू। द ट्रांसफॉर्मेशन इज न्यू। और हम अपनी पुरानी मान्यताएं, अपने पुराने संस्कार और अपने अतीत की पुरानी यादें और पुराने संबंधों में ही घसीटते हुए, रेंगते हुए जी रहे। लाइफ इज एवर न्यू। पास्ट जो हो गया वो हो गया। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब उन्हीं घटनाओं का बार बार चिंतन ना करो। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, वो होना चाहिए था। वही उधेड़ बुन, वही असमंजस की स्थिति, वही द्वंद, वही उहापो। जो चित्त को उद्वेलित करती है। आगे कब बढ़ेंगे? वही अटके हुए हैं। जीवन भाग रहा है। समय की रफ्तार तुम्हारी रफ्तार से तेज क्यों, जबकि हम रचयिता है। आज की अव्यक्तवाणी। असंख्य बार यह अव्यक्तवाणी सबने सुनी है। होली पर, होली की वही चार बातें, पांच बातें, कभी छह बातें। होली अर्थात जलाना, होली अर्थात रंगना, रंग लगाना, होली अर्थात होली, पास्ट इज पास्ट बिंदु, और चौथा होली अर्थात मिलन। हर साल होली आई और हर साल होली पर एक मुरली चली। संसार के लोग भी होली मनाते, उनकी है विनाशी, वो भी रंग लगाते हैं, क्या बन जाते। संसार में पावन आत्माएं नहीं हुई ऐसा नहीं है। एवरी सिस्टम, एवरी कल्चर, एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस स्पिरिचुअल जायंट्स। ऐसा एक देश नहीं विश्व में जहां पर आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म ना हुआ हो। ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसने महान आत्माओं को जन्म ना दिया हो। वो कहीं लाउत से है तो कहीं राबिया है, कहीं सेंट फ्रांसिस डी सेल्स है, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी है, सेंट बर्नार्ड है, तो कहीं मीरा है, तो कहीं अक्का महादेवी है, तो कहीं लल्लन देवी है, तो कहीं रामकृष्ण है। तो कहीं एलन वॉट्स है। हर देश कहीं सुकरात है, तो कहीं अरस्तु है, तो कहीं प्लूटो है, कहीं मंसूर है। हर देश, हर संस्कृति हर सभ्यता ने। महान विभूतियों को जन्म दिया है। बाबा ने कहा इस संसार में ऐसा नहीं कि पावन आत्माएं नहीं है, परंतु उनकी पावनता और तुम्हारी पावनता में क्या अंतर है? तुम्हारी सहज है, तुम्हारी अविनाशी है, तुम्हारी वर्षे के रूप में प्राप्त हुई है, तुम्हारी बिना मेहनत के है, तुम्हारी 21 जन्म चलने वाली है। ऐसी 5 बातें इस मुरली में कही है। तुम्हें वरदान के रूप में मिली है ये पवित्रता। आज की मुरली से कार्य, सबसे पहला कार्य एक चक्र व्हील जिसमें ये 4 बातें लिखनी। रोज अमृत वेला चेक करना है, आज मैंने क्या क्या जलाया, पुरानी स्मृतियां पुराने संस्कार जलाया नहीं जलाया, जला दो, देखो उसको। राख अगर हो तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। राख, राख होती है, उस राख से उस संस्कार को लिखो और उसको मिटाओ। ऐश, क्या क्या जलाया। दूसरा रंग, क्या कहा बाबा ने, रंग जाओ, किसमें रंगो, मात्म रंग में रंग जाओ, ज्ञान के, गुण के, शक्तियों के, याद के, दृष्टि के, वृत्ति के, भावना के, प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाओ, उसके रंग में रंग जाना। जब दो रंग रंग जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो ये नहीं पता चलता है कि कहां से कौन चालू हो रहा है और कहां कौन खत्म। एक दूसरे में मिल जाना, घुल जाना, एक हो जाना, लीन हो जाना, समा जाना। कल एक प्रश्न पूछा था, भोजन का रिप्लेसमेंट है प्राण, शब्द का रिप्लेसमेंट है मौन, शब्द या आवाज, शब्द अर्थात लिखित कविता है, गीत, लिरिक्स, और आवाज अर्थात संगीत, सुर, ताल, लय, स्वर, ध्वनि, इन सब का, दोनों का रिप्लेसमेंट है मौन। तीसरा काम विकार का रिप्लेसमेंट है अतिंद्रिय सुख। अतिंद्रिय सुख की मात्रा बढ़ते ही काम अदृश्य हो जाता है। और कल प्रश्न पूछा था, नींद का रिप्लेसमेंट क्या है? नींद का रिप्लेसमेंट है समाधि। नींद का रिप्लेसमेंट है प्रभु प्रेम में लीन हो जाना। नींद का रिप्लेसमेंट है राजयोग। नींद का रिप्लेसमेंट है योग निद्रा। जागृत अवस्था में बैठे हैं पूरी रात, सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि सोए नहीं। ऐसे कितने योगी पुरुष थे संसार में जिन्होंने अपनी पीठ को कभी जमीन से स्पर्श नहीं करने दिया। टाइम वेस्ट, बेहोशी, टाइम वेस्ट, स्वप्न में टाइम वेस्ट हो जाता है, देह भान रहता है या पता ही नहीं रहता है क्या है, तो जागृति तो नहीं रही। नॉन स्लीपिंग सेंट का वर्णन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब में, मुजुमदार। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में व्यक्ति सो नहीं सकता, जागृत रहता। उसके लिए सब एक ही है। गीता में लिखा है जो अज्ञानियों के लिए नींद है वो ज्ञानी के लिए दिन है, या निशा सर्वभूतानां। रंगना, कैसे रंगेंगे? कोई रंग है जो लगाएंगे, क्या करेंगे? अपने विचारों को उसके विचारों के साथ एक कर देना, मुरली के विचार और हमारे विचार एक हो जाए, मुरली के वाक्य और हमारे मन के भाव एक हो जाए। इसलिए उठते जागते सेवा में इतना न खो जाओ कि चिंतन ही बंद हो जाए। सेवा करते करते बुद्धि ब्लंट हो जाती है कई बार, क्योंकि रिपीटेशन है, वही 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 कार्य, काम करना बंद हो जाती है। विचार, विवेक, इसलिए अपनी बुद्धि को रोज कार्य देना है, कुछ लिखने का, कुछ सोचने का, कुछ करने का। नहीं तो बिना सोचे बस वो करती रहती, सुबह उठे अमृत वेला गए बैठे, वो चार धाम भी रूटीन है, इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे, निकले वहां से फिर क्लास में बैठे, वहां गए खाना भी खाया, सब किया, ड्यूटी पे गए, सारा कुछ किया, काम पूरा हुआ, सो गए। कोलू का बैल गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे, रिपीट 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 रिपीट, उसे खुद नहीं पता वो कर क्या रहा है। सेम 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 सेम। पिकनिक जाओ, खेल कूद करो, वापस आ जाओ, वही वही वही। विचार नवीनता करो, उसके ऊपर अभी लेख लिखो, एक क्या क्या किया, जैसे किसी आर्टिकल में देना है, पब्लिश करना है वो न्यूज। यदि कोई जर्नलिस्ट बैठता है किसी सभा में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई राजनेता बैठा है और 15 जर्नलिस्ट है, तो वो जर्नलिस्ट कैसे बैठे रहते हैं? जागृत अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है उनको अपने न्यूज़पेपर में कल डालना है, तो उनको क्या करना होता है? नोट्स। और जिसको डालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो कैसे बैठेगा? ठीक है, वो कमेंट करेगा, अच्छा ऐसा बोला, ठीक है। क्योंकि बुद्धि ग्रहणशील नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। ऐसे समझो कि जो अभी भी आप सुन रहे हो, सोचो इस पर एक आर्टिकल बनाना है और इसके कल के अखबार में इसको डालना है, तो वो सारी चीजें थोड़ी ना डालोगे एक घंटे वाली, एक दो चीजें उठा लोगे मेन और अपने रीति से डालोगे, और ताकि जो कहने वाला है वो भी पढ़े तो बोलेंगे अरे बाप रे, ये हमने कहा, कमाल, किसने लिखा ये ये तो हमारी शैली भी नहीं है, हमने तो ऐसे ही कह दिया था। वो एक कला है, तो कला को विकसित करते रहना है, एक लक्ष्य रखना है विकास का। जब भी हम किसी भी परिस्थिति से गुजरे, द रिजल्ट शुड बी ग्रोथ, परिणाम विकास हो। कोई भी क्लास अगर सुन रहे हो या सुना रहे हो, मुरली में बैठे हो, मुरली के बाद में रिजल्ट शुड बी ग्रोथ। खाली सुन लिया, कुछ के कुछ लिख दिया, जैसा सुना रहे वैसे के वैसे लिख दिया, वैसा लिखना नहीं है। लिखना एक अपने आप में कला है, अपने रीति से लिखो उसको, नहीं तो गोल 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 बैल घूम रहा है बस। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे शरत चंद्र बोस, दो भाई थे, एक छोटा सुरेश एक शरत। वो एक दिन ट्रेन से गुजर रहे थे, सुबह के 3 बज गए थे, वॉशरूम गए, थोड़े से नींद में होंगे, घड़ी बिड़ी निकाली रखी, ट्रेन चलती हुई और ट्रेन नीचे गिर गई बाथरूम में, घड़ी ट्रेन नहीं सॉरी घड़ी नीचे गिर गई, बेहोशी, बेहोश का अभ्यास चालू है। तो वो घड़ी तो बहुत कीमती थी और विलायत से किसी ने सौगात दी थी, साधारण घड़ी नहीं थी, कीमती घड़ी, वो भी ट्रेन से गिर गई और सुबह 3 बजे अंधेरा रात, ट्रेन गुजर रही है किसी जंगल से, जंगल कहो या फिर खेत, अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कोई प्रकाश नहीं। और वो उस समय वो ट्रेन की चेन खींचते, टीटी आता है, वो पूछता क्या हुआ, बोलता ऐसे ऐसे हुआ घड़ी गिर गई है। वो तो ठीक है घड़ी तो गिर गई, पर अभी ट्रेन तो कितनी आगे निकल गई है, ट्रेन रफ्तार से, तो कैसे पता चलेगा। वो कहता है पता तो चलेगा, क्योंकि ट्रेन जब घड़ी गिरी तो मेरी जो सिगरेट थी उसको मैंने डाल दिया, वो सुलगती हुई सिगरेट उसके ही 1 फीट के आसपास कहीं ना कहीं होगी। तो आदमी को दौड़ाया गया, आदमी भागा और वहाँ पे सिगरेट मिली जलती हुई, अंधेरा था कुछ भी प्रकाश नहीं और आसपास घड़ी मिल गई। तो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, कैसे आपको पता चला, कहाँ पढ़ा, किस किताब में पढ़ा, ये आपको उत्तर पता कैसे चला कि जब घड़ी गिरती है तो सिगरेट भी डालनी होती है, ये उत्तर आपको पता कैसे चला, किसने बताया, कोई तो गुरु होगा। वो कहते हैं ना तो इससे पहले मेरी कभी घड़ी गिरी, ना तो इससे पहले मैंने ऐसा कभी किया, तो पता कैसे चला, उस समय ये करना है ये पता कैसे चला। अगर कोई बीके होता तो हम पूछते किस अव्यक्त मुरली में पढ़ा, किस क्लास में सुना, किसकी क्लास थी। हाँ बाबा ने कैसे तुमको उस समय टच कराया। तो वो कहते ना तो मैंने किसी क्लास मैंने कहीं सुना, ना किसी किताब में पढ़ा, मुझे पता है जब जीवन में कोई समस्या हो तो समग्र बुद्धि सारे प्राण पन से उसका मुकाबला करना चाहिए, बस मुझे इतना पता है, अपनी सारी शक्तियां लगा देना चाहिए, अपने सारे विचार को केंद्रित कर देना चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या हो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हम नहीं ढूंढ पाए। उस समय जो सूझता है कॉमन सेंस लॉजिक तुरंत लगाना, पर ये एक दिन में नहीं होगा, इसकी क्या चाहिए, रोज की प्रैक्टिस चाहिए। अचानक जीवन में परिस्थिति आ गई, क्योंकि परिस्थितियां निमंत्रण देकर नहीं आती, विपत्तियां निमंत्रण देकर आती है क्या, क्या पहले इनविटेशन देते हैं कि आज दोपहर को ऐसा कुछ होगा, विपदा विपत्ति त्रासदी कभी निमंत्रण देकर नहीं आती, अचानक का पार्ट, एवर रेडी। समस्या आए तो प्राणपन से पूर्ण होश के साथ एकाग्रता के साथ आत्माभिमानी स्थिति से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इस समय मैं क्या करूं, मुरलियों में आता है ना, साकार मुरली में, अगर कोई समस्या हो तो बाप से पूछो, बाबा मुझे क्या करना चाहिए। परंतु कई बार जो हम बाबा से पूछते और जो उत्तर मिलता है वो हमारा ही उत्तर होता है, हमारा इधर से प्रोजेक्शन। एक कुमार कुछ दिन पहले ओपीडी में आया था, वो कह रहा था कि मैं इधर मधुबन में आया हूं और बाबा के सामने बैठा तो बाबा ने मुझे ऐसी टचिंग कराई कि बच्चे तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है, तुम्हें अभी मधुबन में दिन रात खाना है। तो वो कह रहा था ऐसी मुझे बाबा ने टचिंग की, आपका क्या विचार है। ऐसी उसको कुटिया में टचिंग आई, ताकि तुम्हारा वजन कम हो गया, अभी बढ़ा उसको, ऐसा बाबा ने कहा है। मैंने कहा ठीक है करो। तो सबसे पहला काम जलाना, दूसरा रंगना, तीसरा है पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया, अभी उसका कोई चिंतन नहीं। स्टॉप, कब तक उसको लेके घूमोगे? वो शंकर जी थे ना, 6 मास तक सती के शव को लेके ढोते घूमते फिरे। एक बार चेक करो कोई सती तो नहीं बैठी जिसको लेके घूम रहे हो। पास्ट इज पास्ट। और लास्ट में है मिलन मनाना, तो इसके लिए 2 और होमवर्क है। तो सबसे पहला कार्य है एक चक्र निकालना, उसमें ये चक्र में 4 बातें लिखना और सुबह सुबह चेक करना कि मैंने पुराने को सब जलाया है, अतीत को अतीत कर दिया है, बिंदी लगा दी है, पास्ट इज पास्ट, रंग रहा हूँ बाबा के रंग में, मुरली के रंग में, ज्ञान के रंग में, मधुबन के रंग में, परमात्मा प्रेम के रंग में, परमात्मा समर्पण के रंग में, उसके चिंतन में। और चिंतन इतना व्यर्थ है संसार में कि मुरली सर्वश्रेष्ठ चिंतन। एक मुरली लो, डायरी लो, 15-20 पॉइंट लिखो, मुरली को हटाओ, ये पॉइंट जेब में रख दो, अब दिन भर में बीच बीच में निकालो, अच्छा ये है, अच्छा ये, ताकि मन नीचे ना जाए। मन का स्वभाव है नीचे भागना। गेंद होता है ना, सीढ़ियों पर गिराओ तो नीचे ही जाता है, ऊपर आने का कोई चांस नहीं है। उसीलिए मन का स्वभाव है लोअर में जाना, उसको ऊपर में जाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो करेंगे क्या? कुछ तो चाहिए। पॉइंट्स लिख के रखना है और कुछ पेंडिंग पॉइंट्स रखने की, इसका चिंतन अभी बाकी है। कुछ पेंडिंग संस्कार रखना, इस पे मुझे काम करना है, करूंगा, जैसे टाइम मिलेगा करूंगा, क्योंकि बाकी भी सेवाएं हैं, ढेर सारी चीजें हैं। बिंदी, पास्ट इज पास्ट, यूनियन। एक दूसरा पोस्टर बनाना है, होली पास्ट इज पास्ट, बस ऐसा एक पोस्टर, होली इक्वल टू पास्ट इज पास्ट, एक पोस्टर। होली मतलब जो हो गया वो हो गया, अतीत अतीत खत्म, उसका आप क्या चिंतन करो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसा। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही है, नो क्वेश्चन टुडे। इसमें 3 प्रश्न है, क्यों, क्या और कैसे। क्यों का उत्तर है, क्यों का उत्तर क्या है, पेपर है। क्या का उत्तर है, नथिंग न्यू। कैसे का उत्तर है, माया आई और गई। क्या उत्तर, 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्यों, तो मन हमारा कहता है ऐसा क्यों, उत्तर खुद ही दो, पेपर, त्रिकालदर्शी हो, विजयी बनने वाले हो। क्यों, जैसे ही मन में क्यों उठा, उत्तर क्या करना, तो वाई आया तो क्या लगा देना, पेपर। व्हाट आया तो लगा देना नथिंग न्यू, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ही आया है। बाधाएं आएगी, समस्याएं आएगी, विघ्न आएंगे, सब होगा, सब कुछ होगा। इतनी बड़ी पदवी मिलने वाली है तो पेपर टफ होना चाहिए कि सिंपल। आईएएस का एग्जाम टफ होता है, क्यों, यंग लोग, उनके नीचे सब बूढ़े बूढ़े, 25 साल का डायरेक्टर बन के आ जाता है, SDM बन के आ जाते हैं, एकदम यंग। क्यों, एग्जाम पास किए, धीरे धीरे अनुभवी बनते हैं, अपने जो नीचे रहते हैं उन सबसे सीखते सीखते, और अनुभव सिखाता है, परिस्थितियां सिखाती है। तो व्हाट प्रश्न आया तो क्या कहेंगे, नथिंग न्यू। और हाउ अगर आया, कैसे, ये प्रश्न मन में उठते तो सोचो कि माया आई थी, सिखा के चली गई, बस ये 3 है। तो नो क्वेश्चन टुडे, ये आज का होमवर्क है। यही तो प्रश्न पागल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, न्यूट्रल, साक्षी। पांचवा, अगला साइलेंट ब्लेसिंग प्रैक्टिस। बाबा ने कहा कोई ऐसी आत्मा होगी जो आसुरी संस्कार वाली होगी, कोई ऐसी आत्मा होगी जो दुश्मन होगी, उसको क्या करो, चुपचाप साइलेंटली बिना उसको बताए क्या करते रहो, दुआएं देते रहो, शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते रहो। और एक इसी के साथ जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअल हग, ये जो मिलन है ना, कौन कौन सा मिलन, बाबा ने कहा जो भी मिले उसको क्या करो, गले लगाओ, वास्तव में गले मत लगाना, मेंटल हग, कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ब्राह्मण परिवार की आत्मा है। मुरली में ये आया है कि जो भी मिले उसको श्रेष्ठ भाव से गले लगाओ, स्पिरिचुअल हग। एक भारत में है ना हगिंग अम्मा, पता है ना, माता अमृतानंद में जो भी आता है सबको गले, जो भी आता है सबको गले, उसका पुलिस कितने लाख लोगों को गले लगाया उसका भी एक फिगर है, रिकॉर्ड है, सबको माँ, माँ का स्वभाव है भीतर सबको गले लगाना। तो किसको गले लगाना है, कठिन आत्मा को, डिफिकल्ट सोल। और कैसे गले लगाना है, जो भी मिले मनसा से कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये प्रभु परिवार की आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा है, भगवान को इसने जाना है, बाकी उसके जो छोटे मोटे जो संस्कार है इसका क्या है, तो आ भी है चले जाएंगे, वशीभूत है, रहम का भाव, श्रेष्ठ भाव। जो विघ्न डालने वाले होते हैं वो पब्लिसिटी एजेंट होते हैं। उनसे सीखते भी रहना है, उनको हल्के में भी रखना है, नहीं तो टेंशन आएगा। तो ये पांच कार्य है आज के। पहला कार्य एक चक्र बनाना, उसमें चार बातें लिखना, बर्निंग, कलरिंग, अप्लाइंग बिंदु और यूनियन, जलाना, रंगना, बिंदी लगाना, पास्ट इज पास्ट, और मिलन बनाना, मीटिंग। दूसरा, होली का एक स्लोगन पोस्टर, होली इक्वल टू पास्ट इज पास्ट, हो गया अभी उसका कोई डिस्कशन मत करते बैठो। दो लोग मिलते तो गार्डन में देखा होगा बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, क्या करते रहते, जीवन भर की अपनी कहानियां सुनाते रहते एक दूसरे को, टाइम वेस्ट। अब उनके पास नया नहीं है तो क्या करेंगे, वही पुराना, तुम सुनाओ हम सुनाए। झेलते रहो, हम भी, हमने भी ये झेला, तुमने क्या क्या झेला तुम सुनाओ। पहले प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर शादी करते हैं, फिर झगड़े करते हैं, फिर झेलते रहते हैं, फिर अलग होने की सोचते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर प्यार और बढ़ जाता है, फिर मिस करते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस आके फिर झगड़ते हैं, फिर दूर होते हैं, फिर ब्लॉक करते अनब्लॉक करते, ब्लॉक करते अनब्लॉक करते, ब्लॉक करते अनब्लॉक करते, फिर दूर ही हो जाते हैं, पर जब दूर होते तो पता चलता है कि वही सच्चा प्यार है, फिर जुड़ते, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो मिलना, होली का, फिर पास्ट इज पास्ट, स्पिरिचुअल हग, सब आत्मा है, सब कौन है, हमारे अपने, चाहे कोई भी उनके संस्कार, फिर साइलेंट ब्लेसिंग, चुपचाप देते रहना बिना उससे कहे शुभ भावना, और लास्ट नो क्वेश्चंस, क्या आया क्यों आया, उत्तर है पेपर है, क्या का उत्तर है नथिंग न्यू, कैसे का उत्तर है माया आई सिखा के चली गई। तो ये थी आज की होली की अव्यक्त वाणी। होली में एक और चीज है प्यूरिटी वाली, होली अर्थात होली। ओम शांति।
अहम् प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययः।
छिपा अंतिम ज्ञान, ये शब्द आकाश में गीत एक अनजान, रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, ये शब्द आकाश में गीत एक अनजान, अज्ञान के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, संकेत गूंज रहा, अब है अंधेर घड़ी, रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यांतर